अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। 20/3/2017 आज बाप दादा विशेष जो योग युक्त बच्चे सबके बीच योग युक्त बन औरों को भी योग युक्त बनाने वाले हैं, उन्हों को देख हर्षित हो रहे और दिल में ही बहुत बहुत प्यार भरी दिल के प्यार की बाबा की यादें बहुत प्यार से दे रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि इतने सब बच्चे इकट्ठे योग में बैठे, और योग में भी ऐसी योग की स्टेज प्रैक्टिकल में है ये देख बहुत खुश हैं। प्रैक्टिकल योग की स्टेज अर्थात शरीर में रहते आत्मा बाप से मिलन की अनुभूति करे ऐसे बाप देख देख हर्षित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे भी बाप को मुस्कुराते हुए देख बहुत दिल से खुश हो के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कैसी स्थिति में बाप को देख है, योग युक्त में भी कैसी स्टेज बताई है, मुस्कुराते हुए देख किसको, बाप को मुस्कुराते हुए देख, कि गुलजार दादी को देख है, बाप को मुस्कुराते हुए देख, वो भी योग युक्त स्टेज में बहुत दिल से खुश होके रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बच्चे अभी की सभा की रौनक बहुत अच्छी, मुस्कुराने वाली देख देख, बाप भी आज बच्चों की सूरतों में प्यार की झलक देख मुस्कुराए रहे हैं। कौन मुस्कुराए रहे हैं है, बाप, बाप दादा नहीं है, बाप में बाप दादा में और माता पिता में कोई अंतर है या नहीं है कि सब एक ही है, है? जैसे मुरली में बोलते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, फिर बाप दादा का याद प्यार, तो बाप दादा में और रूहानी बाप में कोई अंतर है आत्माओं में या नहीं है? है। अब यहां बैठा बोला कि बाप मुस्कुराते हुए देख, किनको? जो बच्चे इकट्ठे योग में बैठे हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी क्यों लगाया? इसका मतलब कोई और भी है या नहीं है? है? और भी है, कौन? शिव बाबा, बाप दादा नहीं, बाप भी आज बच्चों की सूरतों में प्यार की झलक देख मुस्कुराए रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी मुस्कुराए रहे हैं ना, बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह, बच्चों की मुस्कुराहट बाप की मुस्कुराहट, कौन से बाप की मुस्कुराहट है? रूहानी बाप की मुस्कुराहट माना रूहों के बाप की मुस्कुराहट और बाप की मुस्कुराहट, एक ही बात है क्या? बाप की मुस्कुराहट बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, कब? आज है, पहले नहीं, बाप दादा जो देखना चाहते थे वो चारों ओर देख बाप भी मुस्कुराए रहे, यहां भी लगाई दिया। देखना कौन चाहते थे? बाप दादा, ये कौन है? है? बाप दादा जो देखना चाहते थे वो चारों ओर देख बाप भी मुस्कुराए रहे हैं। ये बाप दादा यहां बोला जो चाहते थे, कौन चाहते थे? बाप दादा, वो चारों ओर देख बाप भी मुस्कुराए रहे थे। ये बाप कौन और बाप दादा कौन? बाप दादा चाहते थे ये देखना, बाप भी मुस्कुराए रहे हैं। भी का मतलब बाप दादा भी मुस्कुराए रहे हैं और बाप भी मुस्कुराए रहे हैं। तो बाप दादा कौन और बाप कौन? बाप रूहानी बाप। रूहानी बाप कैसे मुस्कराएंगे? वो तो रूह है, है? है? शिव बाबा तो यहाँ बोला ही नहीं, ऊपर से लेकर के अभी तक जितनी भी लाइनें पड़ी उसमें शिव बाबा बोला? शिव बाबा नहीं बोला, बाप बोला। हाँ, सारी सभा मुस्कराते हुए देख, बाप भी बच्चों को मुस्कराते हुए देख, अभी तक दिल में मुस्कराए रहे, वाह बच्चे वाह, कमाल है। गुप्त ताकत और उसका प्रभाव किसका, किसका प्रभाव? गुप्त ताकत का प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं। हर एक बच्चा, बाप का बच्चा ऐसे मुस्कराए रहे हैं जैसे हरेक के मुख पर चमकता हुआ चेहरा सारी सभा में देख, बाप भी हरेक बच्चे को देख, बच्चों को देख कितना मीठा मुस्कराए रहे हैं। आज की सभा मेजॉरिटी मुस्कराती हुई बेफिक्र बादशाह, दूर से ही मुस्कराते हुए चेहरे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी एक दो को इसी रूप में देख रहे हैं ना? सभी एक दो को ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत पहचाने हुए मुस्कराए रहे हैं। आज की सभा विशेष मुस्कराती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? सबके मन में एक ही साज है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबके मुख से इशारे यही बोल रहे हैं, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा। आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, यही फीलिंग। लास्ट वाला चेहरा भी देखो तो आज इसी विधि में है। तो आज जहां तक रात जागेंगे वहां सब एक दो को देख जैसे मीठा मुस्कराए रहे हैं। आप एक एक यह बाबा का और सभा का मुस्कराता हुआ चेहरा देखो, यहां क्लियर कर दिया। किसका चेहरा देखो? सारी सभा का चेहरा देखो और हाँ, बाबा का देखो। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। गुलजार दादी का चेहरा साकार है या आकार है या अव्यक्त है या व्यक्त है? क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त माने उनकी आत्मा उड़ जाती है या सामने रहती है गुलजार दादी की? है, उड़ जाती है। तो व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य है या नहीं? नहीं। उन आंखों में कौन सी आत्मा देखने में आती है? गुलजार दादी में ब्रह्मा की आत्मा देखने में आती है। चेहरा मोरा ही बदल जाता है। जो सामान्य चेहरा होता है गुलजार दादी का, और जब प्रवेशता होती है तो चेहरा मोरा बदल जाता है। माना गुलजार दादी की आत्मा गुम हो जाती है। गुम होना माने अव्यक्त हो जाती है। तो यहां बोला बाबा का गुलजार दादी में प्रवेश हुए, ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा है, है? साकार निराकार का मेल है, है? है? साकार निराकार का मेल नहीं, वो तो आकारी ब्रह्म है और अव्यक्त गुलजार दादी है। उनको बाबा तो नहीं कहेंगे। मुरली में तो डिफिनेशन परिभाषा यही बताई कि साकार और निराकार का मेल बाबा है। तो आप एक एक यह बाबा का और सभा का मुस्कराता हुआ चेहरा देखो। कौन देखे? कौन देखे? कहाँ की बात? कहाँ चल रही है वाणी? माउंट आबू। जो भी सामने बैठे हैं सबसे कहा आप एक एक यह बाबा का मुस्कराता हुआ चेहरा याद में और सभा का मुस्कराता हुआ चेहरा देखो। इस कोने में आपका बैठा हुआ मुस्कराता चेहरा देख देख सारी सभा में भी उसी का प्रभाव। चाहे कोई भी अवस्था कोई भी हो, लेकिन अभी सबका चेहरा मुस्कराता हुआ, सबका चेहरा ऐसा मुस्कराए रहा है जो एक सेकंड में सारी सभा बदल गई है। कैसा भी हो, बाबा ने उन्हें बदल, कोई कैसा भी हो चेहरा लटकाने वाला पुरुषार्थी, कैसा भी हो लेकिन बाबा ने उन्हें बदल, वो ही चेहरा दिखाई रहे हैं। सबकी शक्लें चमकती हुई दिखाई दे रही है। हरेक की शक्ल जैसे बाबा के वतन में चमकती हुई दिखाई देती है, कौन सा वतन? बाबा के कौन से वतन की बात की है? साकार वतन की बात की, आकारी वतन की बात की, या निराकारी धाम की बात की है? साकार वतन, बाबा के वतन में चमकती हुई दिखाई देती है हर एक की शक्ल। उदाहरण दिया, जैसे बाबा के वतन में चमकती हुई दिखाई देती है, संदेशियां जाती हैं, वतन में जाती हैं, तो वहां शिव बाबा को भी देखती है और ब्रह्मा बाबा को भी देखती है। तो वतन में सात के चेहरे चमकते हुए दिखाई देते, ऐसे हरेक की शक्ल आज आप भी ऐसे चमकते हुए दीपक दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुख से बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? हर एक बच्चा ऐसे चमकती हुई सूरत और मूरत से जैसे अभी चित्र में दिखाई देते हैं, ऐसे ही चमकते हुए सितारे बहुत अच्छा चमक रहे हैं, क्योंकि हर एक इस चमकते हुए सितारे की चमक बहुत सुंदर। क्यों? हर एक बच्चा अपने चमकदारी सूरत में दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र है तो आपका ही चित्र है, लेकिन ऐसा चमकता हुआ सितारा अभी जैसे पहले दिखाई दे रहा था, ऐसे सफेद चमकता हुआ, साधारण रूप नहीं लेकिन चमकता हुआ फेस, वो बड़ी सभा बहुत अच्छी लग रही, चमक रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिस बच्चे में चमक न हो, क्योंकि अभी जब बाबा को देख रहे हैं चमकता हुआ, ऐसे ही बाप समान सारी सभा चमक रही है। बीस तीन सत्र की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज, जो बाप दादा सुनाते हैं सारी सभा ऐसे बैठी थी जैसे पता नहीं कोई सचमुच ऊपर से फरिश्ते इस धरनी पर पहुंच गए हैं। इस समय है, किस समय फरिश्ते धरनी पर पहुंच गए हैं? जिस समय बाप दादा सुनाते हैं, ये रूप आपका भी बड़ा प्यारा है। सुनने वाले बच्चों का, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, संपूर्ण मूर्ति हो गए हैं और ये रूप बच्चों को कईयों को दिखाई दे रहा है। कैसा रूप बताया? अरे रूप की खासियत बताई ना, कैसा रूप? अव्यक्त फरिश्ते का रूप, चमकते हुए सितारे जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत खुश हो रहे हैं। सभी फरिश्ते रूप में अपन को देख खुश हो रहे हैं। आप सभी हमको भी आपके फरिश्ते रूप में बाबा दिखाई रहा है। आप सभी को भी दिखाई रहा है और हमको भी आपके फरिश्ते रूप में बाबा दिखाई रहा है। हमको माने किसको? किसने बोला? हाँ, हर एक पूज्य समान दिखाई दे रहा है। अभी तो ज्यादा समय नहीं बैठ सकते क्योंकि सबको संग में भी अपना स्वरूप अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहा? ज्यादा समय नहीं बैठ सकते। कौन है? गुंजार दादी में ज्यादा समय नहीं बैठ सकते। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकते? है क्योंकि पिछली वाणी में इशारा दे दिया गुलजार दादी के मुख से। बाप दादा बोले दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्बुराम ब्रह्मा कुमारियों ने बाबा का मुंह बंद कर दिया और बोला बाबा आप माउंट आबू में बैठे हैं, दिल्ली में नहीं बैठे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा की बुद्धि माउंट आबू से उड़कर कहाँ चली गई? है दिल्ली में चली गई। और ये भी बोला आप सबको भी दिल्ली जाना पड़ेगा। इसलिए बोला अब ज्यादा समय नहीं बैठ सकते। किसने? गुलजार दादी। क्योंकि सबको संगम युगी अपना स्वरूप अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी फरिश्ते रूप में एक सेकंड में जैसे पहले मर्ज हुए थे ऐसे ही फरिश्ते रूप में अभी अभी भी दिखाई दे रहे हैं। सारी सभा के यहां देखो क्या कहा है? सारी सभा किस तरफ इशारा किया? सामने बैठी हुई सभा को इंट्रोड्यूस किया। सारी सभा आकर के यहां देखो। कहां आकर के देखो? सामने ही तो बैठी हुई थी माउंट आबू में सभा। अव्यक्तवाणी चल रही थी तब। आके यहां देखो। कहां देखो? हाँ, कितने में बदल गई है। कितने ताज सब कहां जाएंगे? कौन से ताज है? कितने जिम्मेदारी का ताज धारण करने वाले? राजधानी स्थापन करने की भी जिम्मेवारी होती है या नहीं है? प्रैक्टिकल में कोई निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? और दुनिया में हिस्ट्री में राजधानी कैसे स्थापन होती है? कोई राजा की राजधानी कैसे बनती है? हा? अरे आराम से घर में बैठे बैठे ही बन जाती है क्या? कैसे बनती है? हाँ, लड़ाई के बाद राजाई मिलती है। कैसे बनती है राजधानी? राज्य कैसे मिलता है? पहले लड़ाई, फिर बादशाही। तो बताया, इतने ताज, जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाले, ताज माने जिम्मेवार, ये सब कहां जाएंगे? सारी सभा से कहा, पहले भी कहा, सबको जाना पड़ेगा। अभी फिर बोला, इतने ताज सब कहां जाएंगे? कहां जाएंगे है? आगे पीछे नंबर बार दिल्ली में जाएंगे ना, जैसे गुप्त मर्ज रूप में है, इसी को ही इमर्ज रूप में देखेंगे। क्या अभी राज्य की राजधानी स्थापन करने वाले गुप्त हैं या प्रत्यक्ष हैं संसार के सामने? जैसे अभी गुप्त रूप में हैं, इसी को ही इमर्ज रूप में देखेंगे। सब है आने वाले भविष्य में। सारी सभा देखो कितनी चमकीली नजर आ रही है। कोई टेढ़ा हो, बांका हो, क्या क्या रुद्रमालम कैसे होते हैं है? कैसे होते हैं? टेढ़े बांके होते हैं। तो कोई टेढ़ा हो, बांका हो, कृष्ण को क्या कहते हैं? बांके बिहारी कहते हैं ना। तो कोई टेढ़ा हो, बांका हो, सब चमक रहे हैं। क्या पसंद है? अपना चमकता हुआ फरिश्ता रूप पसंद है ना? सेकंड में चमकीले बन गए। सारी सभा देखो चमकीली है। अपना ही चमकता हुआ चमकीला रूप अच्छी तरह से देख लो। ऐसे चमकीला अपना स्वरूप देख देख बहुत खुशी हो रही है। तो ये अभी का रूप चमकने वाला, ये थोड़े समय के लिए बाबा ने मज करके दिखाया। क्या कहा? थोड़े समय क्यों लगा दिया है? थोड़ा समय क्यों लगा दिया है?
ज्यादा नहीं बैठ सकते
नहीं। जब विजय पाने के लिए घर परिवार से जाते हैं, विजय का टीका लगा के जाते हैं ना, तो युद्ध के लिए जाते समय बहुत उमंग उत्साह में जाते हैं या मुंह लटका के जाते हैं? तो बताया, ये थोड़े समय के लिए बाबा ने इमर्ज करके दिखाया कि ऐसे आप सभी फरिश्ते हैं ही। आप सभी किसके लिए था? जो सामने बैठे थे उनके लिए कहा। अब फरिश्ते रूप में बाबा ने आप सबको दिखाया, सबको दिखाया। आप सबको दिखाया, कैसे दिखाया? है, कीवी भी दिखाया, कोई डीवीडी में बीसीडी में दिखाया, सबको कैसे दिखाया? सेकंड में बदल गए, सारी सभा चमकीली ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही, अपनी शक्ल आप देखो कितनी प्यारी लगती है, संपूर्ण है ना। कौन सी शक्ल की बात की? पुरुषार्थी स्वरूप की बात की या संपूर्ण पुरुषार्थ की बात की? संपूर्ण पुरुषार्थी बनेंगे तब के चित्र बनते हैं भक्ति मार्ग में, या अपूर्ण पुरुषार्थी रूप के बनते हैं? संपूर्ण रूप के चित्र बनते हैं। तो आपकी शक्ल प्यारी लगती है क्योंकि संपूर्ण है, वो संपूर्ण चेहरे भविष्य के लिए बताया कि अभी के लिए बताया है? आप कह के इंट्रोड्यूस किया किनको? सामने बैठे वालों को। तो बताया संपूर्ण है ये चित्र, चमकीले चेहरे वाले वर्तमान पुरुषार्थी जीवन की बात नहीं बताई, तो कितनी सुंदर लग रही है। अभी साधारण रूप बदली करके फरिश्ता रूप में देख रहे हो ना, क्या कहा है? बार 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 साधारण साधारण क्यों बोल रहे हैं? आगे पीछे क्या दिखाई देता है? फरिश्ता और कितनी सभा चमकती हुई, साधारण रूप किसी का नहीं है, सभी का रूप यह एक ही जैसा फरिश्ता दिखाई देता है, बाकी तो अपना अंदर फर्क कि किस चीज का फर्क है। जिनको अंदर की कमी है वो फर्क की बात तो वो जाने, फरिश्ता रूप अपना जो है वो खास दिखाना है। एकदम फरिश्ता, क्या मतलब फरिश्ते का है? फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। मेरा लड़का, मेरी बहू, चाचा, मामा, काका, ताऊ, इन देह के रिश्तों से कोई रिश्ता नहीं। किसकी बात बताई? संपूर्ण स्टेज अलग करने वालों की बात बताई कि उन आत्माओं की देह के रिश्तों से कोई कनेक्शन की बात नहीं रहेगी। तो देखो फरिश्ता रूप में जब चेंज होते हैं तो कितनी सभा बदल जाती है। वो स्वयं ही आपका फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो गया है, तुम्हारा ही चमकता हुआ यह स्वरूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। क्या कहा है? पहले भी बोला थोड़े समय के लिए, अभी फिर बोला क्या, ये फरिश्ता स्वरूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। कुछ समय क्यों हा? अरे अभी बताया ना, युद्ध के लिए जाते हैं तैयार होकर के, तो बड़े उमंग उत्साह में जाते हैं, तो उस समय फरिश्ता चमकता हुआ होगा, फरिश्ता चेहरा होगा या लटका हुआ होता है, है? फरिश्ता रूप चमकता हुआ चेहरा होता है, हम विजय पाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, पहले ही बोला थोड़े समय के लिए और अभी भी बोला कुछ समय के लिए आपके साथ रहेगा, ऐसे क्यों बोल दिया है? अरे युद्ध में जाते हैं तो भले बहुत उमंग उत्साह में जाते हैं, लेकिन फिर जब घनघोर युद्ध होता है ना, तो घाव लगते हैं ना, है, चोटें आती है ना, आक्रमण के ऊपर आक्रमण होते हैं ना, या स्थूल आक्रमण की बात नहीं है, इसका आक्रमण है, अरे माया का आक्रमण, और माया के साथ कौन है, माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाई लिया, प्रकृति का रूप है जगदम्बा, क्योंकि दुनिया में जगत पिता के बाद सबसे जास्ती पावरफुल कौन है, परिवार में जो बाप मुखिया होता है उसके बाद सबसे जास्ती सत्ता सबसे जास्ती ताकत परिवार में किसके हाथ में होती है, माँ के हाथ में होती है। तो बोला माया तो पावरफुल है ही, बाप की बेटी है, छोटी बेटी है बड़ी बेटी है, बड़ी तो है लेकिन जगदम्बा से भी बड़ी है नहीं, तो दोनों, क्योंकि जैसे बड़ा भाई बाप समान होता है वैसे बड़ी बेटी भी माँ समान होती है, पावरफुल होती है। तो ये चमकता हुआ स्वरूप जब घनघोर युद्ध होगा, इसलिए बताया कुछ समय ये स्वरूप चमकता हुआ आपके साथ रहेगा। नंबर बार क्या, कोई का लंबे समय तक और कोई का थोड़े समय तक, लेकिन अपना ये फरिश्ता स्वरूप पक्का हो गया, मैं फरिश्ता स्वरूपधारी हूं, थोड़ा समय इसमें इस फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करके देखो ये कितना मीठा है। अभी बाबा फरिश्ता भव, क्या फरिश्ता भव का रूप प्रकट करता है, अभी एक सेकंड में फरिश्ता, क्या कहा, अभी कैसा समय चल रहा है, है कैसा समय आ रहा है, क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहले भी बताया था एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी बन जाएं। तो फिर याद दिलाया, एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात फरिश्ता मूल वतन में होता है, साकार वतन में होता है या सूक्ष्म वतन में होता है? कहाँ होता है फरिश्ता? कहाँ होता है? सूक्ष्म वतन में होता है, उसे अव्यक्त वतन बोलते। अभी एक सेकंड में फरिश्ता, एक सेकंड में साधारण, साधारण का मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में या साकारी वतन में? साकारी वतन में साधारण। साकार स्थिति होगी, मन देह की स्थिति होगी, तो दुनिया में जैसे सब देहधारी, वैसे बच्चों के लिए बताया, अभी अभी साधारण, अभी अभी फरिश्ता दिखाई दो। ये प्रैक्टिस करते करते फरिश्ता बन जाएंगे। कौन सी प्रैक्टिस बताई? एक सेकंड में साकारी साधारण दिखाई दो, जैसे दुनिया में सब सामान्य है मनुष्य, और एक सेकंड में जब चाहो तब फरिश्ता। इस फर्श की दुनिया वालों से कोई कोई रिश्ता नहीं, ऐसे बन जाए। अभी फरिश्ता स्वरूप रहना, ज्यादा समय रहेगा फरिश्ता स्वरूप, क्या कहा है? ज्यादा समय रहेगा फरिश्ता स्वरूप। अभी कहा कुछ समय, उससे पहले कहा थोड़े समय के लिए, अभी ये क्या कहा? ज्यादा समय रहेगा फरिश्ता स्वरूप। कहा है? जब फाइनल विजय आएंगे तब की बात बताई। इस दुनिया में संगम युगी फरिश्ता रूप ये कुछ समय रहेगा, क्या कहा? इस दुनिया में अभी ये फरिश्ता रूप कुछ समय रहेगा। कोई फरिश्ता रूप, कुछ समय फरिश्ता रूप आपके साथ रहेगा। कौन रहेगा? आपके साथ रहेगा। कौन रहेगा है? कोई फरिश्ता रूप। ये कोई कह के किस तरफ इशारा किया? कोई फरिश्ता रूप, कुछ समय फरिश्ता रूप आपके साथ रहेगा। बाद में हा? बाद में क्या होगा है? अरे क्या मतलब है? कुछ समय आपके साथ रहेगा, फिर क्या होगा? कौन रहेगा है? कोई फरिश्ता रूप, नाम नहीं लिया, कोई फरिश्ता रूप, कुछ समय फरिश्ता रूप आपके साथ रहेगा। आप भी करें अच्छी तरह से अनुभव, परिस्ता रूप। क्या कहा? बी क्यों लगा दिया? हा? आप भी करें कहें ये फरिश्ता रूप कुछ समय अनुभव। बी क्यों लगाया? ऊपर बता ना, कोई फरिश्ता रूप कुछ समय फरिश्ता रूप आपके साथ रहेगा, कोई फरिश्ता रूप माना कुछ समय रहेगा, उसके बाद स्थिति के अनुसार नहीं रहेगा। फाइनल पेपर होने वाला है या नहीं होने वाला है? है? टाइम पूरा हुआ है? नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी दिल्ली दूर है। अरे बताया ना, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में, तो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? है 17-18 में पूरे होते हैं ना। तो जब पूरा टाइम होता है तो परीक्षा शुरू होनी चाहिए ना, होगी कि नहीं? होगी। परीक्षा का जब रिजल्ट निकलेगा, परीक्षा होगी, फिर टू लेट का बोर्ड लगता है। क्या? जो पास हो गए उससे पास की लिस्ट में आ गए वो तो आ गए, बाकी के लिए टू लेट का बोर्ड। कब? परीक्षा होने के बाद या पहले ही? परीक्षा होने के बाद। इससे पहले कभी टू लेट का बोर्ड लगा था? वो कहते नहीं लगा था, माताएं कहती नहीं लगा था। कहीं लगा था टू लेट का बोर्ड? लगा था है? लक्ष्य बताया था जिंदगी का, क्या क्या बनना है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। वो युगल रूप प्रत्यक्ष होने में टू लेट का बोर्ड पहले कभी लगा था या नहीं लगा था? हाँ, 76 में लगा था, 66 में उसकी घोषणा की थी। लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो 76 आता है। तो 76 में वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई? हुई। वो तो एक युगल था जिसको छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब जो बनना था सो बन गया, अभी और कोई नहीं बन सकता। फिर उसके बाद 40-50 वर्ष और दिए, तो वो 40 वर्ष पूरे होने पर है बोर्ड लगेगा या नहीं लगेगा? रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? परीक्षा होती है या नहीं होती है? 40 वर्ष पूरे होने के बाद परीक्षा होती है या पहले होती है? है? बाद में होती है। 40 वर्ष पूरे होने के बाद परीक्षा होगी है? अभी की बात बताइए कि कुछ समय के लिए बच्चों को ये जो फरिश्ता रूप का अनुभव कराया कुछ समय के लिए, माना युद्ध सामने खड़ा है, माया परीक्षा लेगी, फाइनल पेपर लेगी, और उस फाइनल पेपर में जो पास हो जाएंगे वो दो ही निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे? है, दुनिया में भी परीक्षा होती है, तो जो ऑलराउंड पूरी परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स बैठते हैं उनमें जो अव्वल नंबर आता है उसका नाम पहले डिक्लेयर किया जाता है, क्या कहते हैं, पास विद ऑनर से भी ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर, ये भी गॉडली यूनिवर्सिटी है। वो तो हुआ, अब इसके बाद फिर पास विद ऑनर होने वाले अनेक होंगे या एक ही निकलेगा? पास विद ऑनर होने वाले भी अनेक निकलेंगे ना? तो बताया दो के बाद, दो के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर जो दूसरे नंबर में पास विद ऑनर का वो रिजल्ट निकलता है उसमें आठ निकलेंगे। कौन निकलेंगे? पास विदानर, जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। तो बोला आप सभी अनुभव करें अच्छी तरह से फरिश्ता रूप। कितना फरिश्ता रूप अच्छा है, जितना फरिश्ता रूप में रहना चाहो उतना समय रह सकते हो। इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से डिटैच होकर के अनुभव कर सकते हो या अटैच होकर के अनुभव कर सकते हो? डिटैच होकर अनुभव कर सकते हो, लेकिन वो अभी फरिश्ता रूप जो है, क्या अभी जो है, अभी वो फरिश्ता रूप हमारे हाथ में नहीं है। क्या कहा? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि जो अभी अनुभव कर रहे हो फरिश्ता रूप वो हमारे हाथ में नहीं है। कौन सा फरिश्ता रूप? जो कोई फरिश्ता रूप है वो कुछ समय फरिश्ता रूप आपके साथ रहेगा। क्या फिर वो फरिश्ता रूप सदा काल आपके हाथ साथ में रहे, वो अभी हमारे हाथ में नहीं। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। किससे बोला? जो सामने बैठे थे आबू में, उनसे बोला। ये फरिश्ते की लाइफ में है, यह क्या, यह फरिश्ते की लाइफ में है, क्या है? अरे जो बोला, लेकिन वो अभी फरिश्ता रूप जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो कह के किसकी तरफ इशारा किया? है? हाँ, वो फरिश्ता रूप हमारे हाथ में नहीं है, यह फरिश्ते की लाइफ में है। कौन? यह फरिश्ते की लाइफ में है। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात और भोपाल का है। किसका है? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई उनके लिए सेवा का टर्न है। और फिर दूसरा का नाम किसका बोला? भोपाल। क्या भो माने? भो माने क्या? पृथ्वी। और पाल माने पालने वाला। जो सारी पृथ्वी को पालने वाला ग्रुप है उस भोपाल का टर्न है। एक सीमित क्षेत्र को पालने वाले राजा का नहीं है। क्या छोटे मोटे राजाएं होते थे ना, उनको प्रैक्टिकल में भोपाल कहे हैं, है? उनको प्रैक्टिकल में भोपाल नहीं कह सकते। जो प्रैक्टिकल में भोपाल का पार्ट बजाने वाले होंगे, भोपाल या भोपाल के सहयोगी, वो पक्षपाती होंगे, है? जैसे होता है आंध्र प्रदेश वाले तेलुगु भाषा वासियों को पक्षपात करते हैं, बंगाल वाले बंगालियों के लिए पक्षपात करते हैं, तो उनको कहेंगे कि वो भोपाल हैं या भोपाल के सहयोगी हैं? नहीं। तो किसका टर्न बताया है? गुजरात का टर्न बताया। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। किनके अज्ञान की रात गुजर गई है? पक्षपातियों के अज्ञान की रात गुजर गई है। जो आत्माएं जन्म जन्मांतर पक्षपाती होकर रहती हैं, पूरे संसार का कल्याण नहीं चाहती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वसुधा को कुटुंब मानने वालों के लिए पक्षपात की कोई बात नहीं हो सकती। ऐसे टोटल 24,000 आए हैं। क्या कहा? कितने? 24,000 आए हैं। चौबीस बोला। अगर 108 की माला में देखें तो कितने ऐसी आत्माएं हैं, आत्मा रूपी मणके हैं, जो पक्षपात से रहित तो होते हैं? कितने? 24। कौन से? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी बाप के और चंद्रवंशी माता के। परिवार में, कुटुंब में या वसुधैव कुटुंब में सारे परिवार के कल्याणकारी कौन होते हैं? अरे परिवार में कौन होते हैं? माँ बाप, बाप और माँ, सारे परिवार का कल्याण चाहते हैं। तो बोला टोटल 24,000 आए हैं। उनमें 23,000 भारतवासी हैं। क्या कहा? 23,000 भारत में वास करने वाले हैं। भारत माने जड़ जमीन की ही बात नहीं है कि भारत में भगवान आते हैं, जमीन में आकर रह जाते हैं कि कोई ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले में आते हैं। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा रहने वाला है, जब से बाप आते हैं तब से, यहां संगम युग में ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला होगा तो बुराडा में भी है ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला होगा या नहीं? मनसा के संकल्पों से, वाचा से, या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों की एक्ट से भी ज्ञान युक्त कर्म करेगा, ज्ञान युक्त भाषा बोलेगा, ज्ञान युक्त संकल्प चलाएगा, या इससे परे होकर रहेगा? ज्ञान युक्त ही रहेगा, क्योंकि संगम युग में ज्ञान उठाने वाले गॉडली यूनिवर्सिटी के बच्चे नंबर वार हैं या एक जैसे? तो अव्वल नंबर कोई तो होगा जो पूरा पूरा ज्ञान उठाता होगा। ज्ञान माने जानकारी, काहे की झूठ की? झूठ की जानकारी नहीं, झूठ तो सदाकार नहीं होता है। आज की दुनिया झूठी है, झूठे धर्मखंड, झूठे धर्म और झूठे राज्य फैले हुए, ये सदाकाल रहेंगे नहीं, अल्पकाल के लिए हैं, ये सब भस्म होने वाले हैं। जो सत्य है वो सदाकाल रहता है, सत्य अधिक होता है, और सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य एक होता है, बाकी सब नंबर वार। जो सत्य सनातन धर्म स्थापन करने वाला है वो सत्य बाप एक है। क्या? सत्य बाप एक है। जो सत्य सनातन धर्म स्थापन करने वाला है, जो सत्य सनातन धर्म आदि से लेकर के सदाकाल तक स्थापन रहता है, सारी दुनिया नष्ट हो जाए, महाविनाश में, महामृत्यु के समय जब सारी दुनिया की मृत्यु होती है, उस महामृत्यु में कोई सत्य होगा या नहीं होगा? है? कौन होता है जब सारी दुनिया का विनाश होगा तो कोई रह जाएगा? है? गायन है किसका? किसका गायन है? एक ही मूर्ति है जो सदा सत्य है, और जिसकी मंदिरों में सबसे जास्ती पूजा होती है। किसकी है? किसकी? शिव तो मूर्ति नहीं है, वो तो मेरी बिंदी का नाम है। बिंदी मूर्ति होती है क्या? किसकी मूर्ति? शंकर की। शंकर तो याद में बैठा हुआ है, वो तो पुरुषार्थी है, महादेव। अरे ठीक है, देवों में बड़ा देव महादेव है, तो देवों की भी कोई रचना करने वाला बड़ा है या देव बड़े हैं? तो महादेव बड़ा है या उससे भी कोई बड़ा है? वो कौन? वो एक ही सत्य है, ऐसे नहीं दो सत्य हैं। महादेव भी सत्य है, देवताएं भी सत्य हैं, और उनको देवताओं को बनाने वाला भी सत्य है। जो नरको नारायण जैसा देवता बनाता है, तो रचयिता एक होगा सारी सृष्टि का, ये अनेक होंगे, एक होगा ना, और वो रचयिता साकार होगा या निराकार? सृष्टि साकार तो रचयिता भी साकार, तो वो कौन है? अरे अभी कई दिनों से वाणी चल रही है त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर। उस त्रिमूर्ति के चित्र में बाबा दुरापा देते हैं बच्चों से कि जो बात समझानी है वो बात बच्चे नहीं समझाते। क्या बात पहले समझानी है? बाप का परिचय। तो ब्रह्मा कुमारियों ने बाप का परिचय प्रदर्शनी में, मेलों में, मलाखणों में, कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया है? बिंदी का परिचय दिया। निराकार का परिचय दिया। निराकार का परिचय मैंने उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए ना। आईडी प्रूफ में क्या क्या बातें आती हैं? नाम आता है, नाम आत्मा का आता है या शरीर का आता है? तो वो शरीरदारी कौन? वो मूर्ति कौन? मूर्त माने जो आंखों से दिखाई दे, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने आकार निराकार। तो त्रिमूर्ति के चित्र में वो मूर्ति कौन जिसके लिए गीता में बोला अव्यक्त मूर्तना, वो मूर्ति अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है माने आंखों से देखने योग्य भी है, दिखाई भी देती है, मूर्ति भी है और अमूर्त भी है माने अव्यक्त भी है। और हमको बाबा ने भी यही सिखाया, किसको याद करना है? साकार में, साकार माने मूर्ति, और उसमें किसको याद करना है? निराकार को याद करना है। तो वो अव्यक्त मूर्ति कौन है जो साकार भी है और निराकार भी है और एक ही है, एक पर्सनालिटी है? वो तो पतित है, पतित याद आता है, राम तो त्रेता का है, वो तो फेल हो गया। बाबा ने तो कहा राम वो त्रेता वाला नहीं, अरे त्रिमूर्ति में राम की पूजा होती है क्या? फिर त्रिमूर्ति में नारायण बैठा है, नारायण रचना है या रचयिता है? नारायण जो देवता है वो देवता है या भगवान है? देवता है। 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है या बनने वाला है? बनने वाला है, तो बनाने वाला कौन है? बिंदी, शिव बाप तो बिंदी को कहा जाता है, उसका कोई दूसरा संबंध ही नहीं, वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, बाबा भी नहीं, बाबा ग्रैंड फादर को कहा जाता है। तो नारायण को बनाने वाला कौन है? कौन है शिव बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में?
शंकर।
शंकर फिर वही, वो तो कितनी बार सुनोगे वही बात, शंकर तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद में बैठा हुआ वो पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? वो तो पुरुषार्थी है, खुद ही याद में बैठा हुआ है, खुद ही एक सब्जेक्ट का पुरुषार्थी है। याद के सब्जेक्ट को पक्का कर रहा है कि नहीं है, तो वो है रचयिता। कौन है संपूर्ण त्रिमूर्ति के क्षेत्र में? फिर वही शिव बाबा। वो शिव बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में, वो चित्र कौन सा है? विष्णु। विष्णु देवता है या भगवान है? है देवता है, उसको भगवान बता दिया। अरे सारी दुनिया में उसकी पूजा हुई है, खुदाइयों में वो ही मूर्तियां सबसे जाते मिली हैं। वो जो शिवलिंग है वो लिंग है। क्या है? लिंग है, उसकी लिंग रूप में ही पूजा होती है, दूसरी इंद्रियों के रूप में पूजा नहीं। और देवताओं की दूसरे इंद्रियों की पूजा होती है, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल पूजा करते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ लिंग रूप में पूजा होती है। क्यों है? क्यों? क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, उनमें सबसे जास्ती प्रबल इंद्रिय कौन सी है जो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है? काम इंद्रिय। मुखिया है चोर डकैतों का, मुखिया को कंट्रोल कर लिया तो सारे ही कंट्रोल आ जाएंगे। उस मुखिया को कंट्रोल करने की यादगार है इंद्रिय जीते जगत जीत। क्या? नाक जीते जगत जीत, कान जीते जगत जीत? नहीं, इंद्रिय जीते माने काम इंद्रिय जीते जगत जीत। जो काम इंद्रिय को जीत ले वो जगत जीत संसार में प्रत्यक्ष होता है। जगन्नाथ, जगत पिता, विश्व पिता साबित होता है। ये ठीक है कि शंकर को कहते हैं अमोघ वीर्य, लेकिन क्या पुरुषार्थी रूप अमोघ वीर्य है या संपन्न रूप अमोघ वीर्य है? वो संपन्न रूप बाद में प्रत्यक्ष होगा या अभी प्रत्यक्ष हो रहा है पूरा पूरा? लेकिन बाबा ने आज बोल दिया। क्या बोला है? क्या बोला? कोई फरिश्ता रूप, कुछ समय वो फरिश्ता रूप आपके साथ रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। क्या है? आपके साथ नहीं रहेगा है? क्यों हो जाएगा? कारण है? क्या काम पूरा हो गया? राजधानी स्थापन हो गई क्या? क्या काम पूरा हो गया? अरे फाइनल परीक्षा होगी, फाइनल परीक्षा में सुप्रीम टीचर साथ रहता है क्या? साथ देता है? नहीं देता है। तो कुछ समय साथ रहेगा, फिर क्या होगा है? जब फाइनल पेपर होगा तो तुम्हारे सबके साथ नहीं रहेगा। क्या चाहते कि फाइनल पेपर में भी हमें साथ रहे, बताता रहे है? अरे फाइनल पेपर सदा काल का होता है या थोड़े समय का होता है? है थोड़े समय का होता है। तो बोला कि 23,000 भारतवासी हैं 24,000 में से, क्या 24,000 में से 1,000 क्या है? ब्रह्मा की भुजाएं हैं। 1,000 क्या है? ब्रह्मा की सहयोगी भुजाएं हैं। किस बात में सहयोगी है? सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट? ज्ञान। तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में वो 1,000 भुजाएं सहयोगी हैं। माने ज्ञान में भारत की तरह ही रत रहने वाली है। नंबर वन, किस बात में रत रहने वाली है? ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रत रहने वाली। दूसरी बात नहीं बताई, पहला पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थियों का पहला पुरुषार्थ क्या है? है क्या है? अरे निराकार बाप शिव आते हैं तो क्या वर्षा देते हैं? निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? है तो वो निराकारी वर्षा लेने वाले कौन हैं? कितने हैं? है जो परम ब्रह्म की भुजाएं हैं, है 1,000 हैं, बाकी वो निराकार बाप का निराकारी वर्षा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के धंधे में, लेने और देने के धंधे में उन ब्राह्मणों के सिवाय, 1,000 ब्राह्मणों के सिवाय और कोई परम ब्रह्म के सहयोगी नहीं बनते हैं। थोड़े हैं या ज्यादा हैं? है थोड़े हैं। जो परम पिता है वो ढेर के ढेर हैं परम पिता, या एक है? है परम पिता। क्यों परम पिता कहा जाता है? पिता से क्या मिलता है? तो परम पिता से क्या मिलता है? क्या वर्षा मिलता है? राजा का वर्षा मिलता है। वो खुद राजा है, है? अरे जो राजा होगा, जिसके मुट्ठी में राजाई होगी, राजाई भोगने वाला करने वाला होगा, वो अपनी रचना को बच्चों को राजाई देगा, या जिसके पास राजाई है ही नहीं, जो राजाई करता ही नहीं, वो राजाई देगा? अरे कौन देगा? राजा होगा तो राजाई देगा। मल्टीमिलियनर होगा तो मल्टीमिलियन का वर्षा देगा। करोड़पति अरबपति शंखपति होगा तो अरबपति शंखपति का वर्षा देगा। जमींदार होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा? नहीं है? नहीं। हाँ जमींदार होगा तो देगा ना। और शिव है, वो तो जमीन जायदाद ये स्थूल चीजों का वर्षा देने वाला नहीं। कौन सा वर्षा देता है? ज्ञान धन का वर्षा देता है। वो क्या है? वो ज्ञान का ऐसा अखूट भंडार है, जिस अखूट भंडार में से कोई सारा ही निकाल ले तो भी उतना ही बचता है, कभी खूटता ही नहीं। ऐसा ज्ञान का अखूट भंडार, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का अखूट भंडार, लेकिन उसकी कदर करने वाले कितने हैं? बाकी सब अपने धंधा दोरी में लगे रहते हैं। क्या कहा? अपने पेट के देह के धंधे छोड़ ही नहीं पाते। छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते, रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बाप का धंधा करे सो बाप का बच्चा पक्का, या और धंधे करता रहे सो बाप का बच्चा पक्का है? बाप का धंधा करे सो बाप का पक्का बच्चा। तो कितने निकलते हैं 24,000 में से? है 1,000 हैं जो परम ब्रह्म को फॉलो करते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, और जैसे जुगाली करके गाय है जो भी खाती है उसका रस बनाती है, हम भी जो खाते हैं उसको चबाते हैं तो रस बनता है, खाएं ऐसे ही निकल जाए तो रस बनेगा है? आते हैं वैसा ही बाहर निकाल देंगे, नहीं तो एक दिन कच्चा चावल निकल के देख लेना, क्या 100 ग्राम 200 ग्राम आते हैं, रस बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो ये गाय के निसल जुगाली करने वाले ज्ञान की और उस ज्ञान को अपना बनाने वाले कितने हैं? है 1,000 और बाकी सब 23,000। 23,000 क्या हुए है? उनको ब्रह्मा की भुजाएं कहें है? नहीं कहेंगे, क्योंकि पहला बाप का वर्षा है, ऊंचे ते ऊंचे बाप का जो वर्षा है वो 1,000 के सिवाय किसी ने लिया ही। तो बाकी 23,000 क्या है? भारतवासी हैं जो ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले हैं, उनमें वास करते हैं। जैसे किसी से प्यार हो जाता है ना तो बुद्धि उसी में लगी रहती है कि नहीं? ऐसे जो 23,000 हैं उनकी बुद्धि उन्हें 1,000 में लगी रहती है। क्या कोई की किसी में, कोई की किसी में, कोई की किसी में, कोई की अव्वल नंबर में भी, कोई की लास्ट भुजा में भी लगाव लग जाता है ना? नहीं लगता है? लग जाता है। तो बताया 23,000 भारतवासी हैं, माने ज्ञान की रोशनी में जो 1,000 भुजाएं रत रहने वाली हैं उनमें हैं। और जो 1,000 बताए वो कौन है? वो डबल विदेशी है। क्या कहा? 1,000 डबल विदेशी हैं। डबल विदेशी कैसे? लौकिक परिवार वालों ने भी धक्का दे दिया, लौकिक दुनिया से भी निकाले गए। क्या कहा? निष्कासित हो गए। और बीके में आए, वहां से भी निकाले जाते हैं। उनमें से जो ब्रह्मा की भुजाएं बनते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले बनते हैं, जो बाप ने वर्षा दिया है निराकार ने ज्ञान का वर्षा, उस ज्ञान के वर्षे को जुगाली करके मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाते हैं, अपनी गोट तो नशा चढ़े। मनन चिंतन नहीं करेंगे ईश्वरीय ज्ञान का तो जो नशा चढ़ना चाहिए वो नशा नहीं चढ़ता। तो कितने हैं वो? है 1,000 है, लेकिन वो देशी हैं या विदेशी? डबल विदेशी। देशी भी नहीं, विदेशी भी नहीं, डबल विदेशी। क्या बोला? सबसे पहले गुजरात के भाई बहन खड़े होंगे, कहां के? गुजरात, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। अज्ञान की बातों में माना अज्ञान फैलाने वाले जो देहधारी धर्म गुरु हैं, उनकी बातों में जो फंसते ही नहीं है। अज्ञान फैलाने वाले कोई गुरु निकलते हैं या नहीं है? जो अज्ञान फैलाने वाले गुरु हैं वो सबसे पहले किस अज्ञान में फंसे हुए हैं? उनमें कौन सा अज्ञान है जो साबित ही नहीं कर सकते? नहीं, वो साबित नहीं कर सकते कि बाप कौन है। क्या अपन को भी साबित नहीं कर सकते प्रूफ प्रमाण दे करके कि हम बाप हैं? क्या कहा? ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं? है? नहीं होते, ऐसे होते हैं। देहदारी धर्मगुरु माना देह अभिमानी सांढे देह अहंकार में आकर के बाप का भी अपोजिशन करते हैं और साबित करते हैं ये भगवान नहीं शैतान आया हुआ है। सबसे बड़ा अज्ञान उनके अंदर होता है, उनसे आता है अज्ञान, जो न खुद बाप को जानते और दूसरों को भी बाप की पहचान से दूर कर देते हैं। वो हैं सबसे बड़े अज्ञान, और उनके मुकाबले सबसे बड़े ज्ञानी गुजरात वाले, जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई। बहुत अच्छा। मुन्नी बहन ने कहा, बाबा ओम शांति, आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई चलाई। क्या आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई? मुरली चलाई कि अव्यक्त वाणी चलाई? मुरली क्यों कहते हैं? अरे मुरलिया भगवान की होती है, जिसको भक्ति मार्ग में कृष्ण बोल दिया है। कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, कृष्ण तो राजयोग सिखाता ही नहीं, कृष्ण प्रिंस बच्चा है या बड़ा है? राज को जानने वाला, राज की बातों को जानने वाला है या बच्चा बुद्धि है? बच्चा बुद्धि राजयोग की बातों को क्या जाने? जानेगा? नहीं जानता। तो बताया कि मुन्नी बहन के ये शब्द थे, आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई। क्यों मुरली क्यों बोलते? क्योंकि वो समझती हैं गुलजार दादी में भगवान भगवान आता है, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल आती है और वो वाणी चलाती है माना मुरली चलाती है, जो भक्ति मार्ग में कृष्ण की मुरली प्रसिद्ध है या नहीं? तो ये मुरली शब्द बोलने से मुन्नी बहन ने साबित कर दिया ना कि गीता का भगवान कृष्ण और ब्रह्मा की आत्मा है या नहीं है? क्या साबित किया है? कृष्ण की आत्मा माना ब्रह्मा की आत्मा मुरली चलाने वाली है, भगवान हुई ना है? अरे मुन्नी बहन के अनुसार भगवान साबित हुई क्योंकि मुरली चलाई। अब ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डाला? मुरली का हाल है, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाल दिया। सबसे बहुत बढ़िया से मिले क्या बाप दादा सब बच्चों से बहुत अच्छे से मिले एकदम बीस तीन सत्रह की वाणी का तीसरा पेज। अच्छा अच्छा है क्योंकि कई बच्चे समझते हैं हमारे को लास्ट में मिला है ना जो अभी बाद में बच्चे आए हैं ज्ञान में वो क्या समझते हैं हमको बाद में मिला है ना लास्ट में तो पता नहीं शायद देरी हो इसलिए जल्दी जल्दी मिलाते लेकिन नहीं फल ऐसा नहीं है टाइम की बात ये नहीं देखते यहाँ नहीं देखते हैं कि लास्ट में आए कि बीच में आए या पहले आए क्या ऐसे भी हो सकता है कि पहले पहले आने वाले जो ढेर सारे हैं बड़ी बड़ी राजाई बड़ी बड़ी राजाई की गद्दियां संभालने वाले हैं जैसे भक्ति मार्ग में बताते हैं कृष्ण के ऊपर मथुरा की राजाई में सबसे जास्ती आक्रमण कौन करते थे है? कौन सा राजा था जो बहुत आक्रमण करता था बार बार आक्रमण करता था जरासंध जरा माने पुराना जरा माने पुराने और सिंध माने सिंध के रहने वाले तो शूटिंग हो रही है कि नहीं है बार बार आक्रमण करते हैं तो बोला ऐसे मत समझो कि हम लास्ट में आए हैं फल ऐसा नहीं है टाइम की बातें यहां नहीं देखते हैं लेकिन बाबा भी दिखाता था अगर देरी से कोई आता है तो उनके लिए ठहरते नहीं है क्या अगर देरी से कोई आता है तो उनके लिए ठहरते नहीं है सिवाय दादियों के क्या कहा है दादियों के लिए ठहरते हैं देरी से आने वालों के लिए ठहरते नहीं हैं दादियां तो फाउंडेशन है ना क्या दादियां क्या बताई फाउंडेशन है ना बिल्डिंग बनाई जाती है ना महल बनता है ना तो उसका फाउंडेशन डाला जाता है कहां डाला जाता है जमीन के अंदर जो फाउंडेशन डाला जाता है वो दिखाई देता है बिल्डिंग तैयार होने पर या ऊपर के कंगूरे दिखाई पड़ते हैं कंगूरे दिखाई पड़ते हैं फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ता इसीलिए इशारा दिया ये जो जो दादियां हैं जिनके लिए बोला सिवाय दादियों के और किसी के लिए ठहरते नहीं हैं दादियों के लिए ठहरते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन है नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा तो ये फाउंडेशन में रहेंगी और ऊपर तुम बच्चे आओगे क्या ऊपर की मंजिलों में तुम बच्चे आने वाले हो तो जो तुम बच्चे यहां बोला वो 84 जन्म तक वो संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे उनकी पूजा होगी उनके मंदिर बनेंगे या फाउंडेशन में जो देह अभिमान की मिट्टी में दबे रहे उनकी प्रत्यक्षता होगी, पूजा होगी। सात नारायणों की पूजा होती है, प्रत्यक्षता होती है, या संगम युगी और सतयुग के नारायण की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, है? संगम युगी नारायण के मंदिर बनते हैं, सतयुग के फर्स्ट नारायण के मंदिर बनते हैं, क्यों? वो भी 16 कला संपूर्ण, बाकी सब कला वृत्ति में जाते हैं या चढ़ती कला में जाते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। तो ये दादियां मिट्टी में दबी रहने वाले फाउंडेशन में हैं। कोई ने बोला इंडिया वन सोलार प्लांट का उद्घाटन बाप दादा से कराया, कुछ भी बना है तो यज्ञ में बनाया है और इसी रीत से ही चलते रहेंगे, बाकी तो सब ठीक है। ओम शांति। वार्तालाप करेंगे या मुरली सुनेंगे? वार्तालाप करेंगे है। और बाबा कह रहे हैं आजकल बड़ी अच्छी मुरली चलाई बाबन, आप फिर भी कहते हैं वार्तालाप करेंगे है। अभी अद्वैतवाणी में क्या बोला है? बाप दादा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई, अब अद्वैतवाणी की बात नहीं कर रहे, वो मुन्नी बहन ने बताया, लेकिन बाप दादा ने कहा कि मुरली अच्छी चलाई, तो चलो वार्तालाप कर लो है? है? मुरली चाहिए। अच्छा, तो वाणी चल रही थी प्रातः क्लास की 5/11/66 की, शनिवार को 7/20 के सातवीं लाइन में बात चल रही, छठी लाइन में बात चल रही थी, दुनिया में कोई भी हो, मुसलमान हो, उनको भी सिर्फ ये कहो ऊंचे ते ऊंचा अल्लाह। क्या? ऊंचे ते ऊंचा कौन? अल्लाह। ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा कहां होते हैं? सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में, या साकार वतन में ऊंचा और नीचा होता है। तो उनको कहो, मुसलमानों को भी, ऊंचे ते ऊंचा अल्लाह, ऊंचे ते ऊंचा बाप है। कौन है? सबका बाप रचयिता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, देवता हो, इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, सबका ऊंचे ते ऊंचा एक रचयिता सबको, और वो ही सबको वो इनहेरिटेंस वर्षा सुख और शांति का दे सकते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जो ग्रेट फादर्स हैं, वो नहीं वर्षा दे सकते हैं सुख शांति का इस दुनिया को? कौन दे सकते हैं? जो सबका ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, बापों का भी बाप, जिसका कोई बाप नहीं। वो बात बता देना चाहिए ना अच्छी तरह से कि भाई कि जब गोल्डन एज सतयुग की नई दुनिया थी तो बरोबर थोड़े ही मनुष्य थे, देवी देवताएं थे, और तो दुनिया में कोई धर्म था ही नहीं। वो दुनिया किसने बनाई? अरे आज की चली हुई दुनिया किसने बनाई? दुख दर्दों से भरी हुई दुनिया। और वो दुनिया गोल्डन एज किसने बनाई? जहां डीटीज का राज्य था, है? हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। कैसा गॉड फादर? हेवन का रचयिता गॉड फादर। अच्छा, जब हेवनली गॉड फादर ने हेवन की दुनिया बनाई, देवताओं की दुनिया बनाई, तो वो देवताएं तो बहुत थोड़े थे, तो दुनिया बहुत छोटी थी, बाकी आत्माएं कहां थी? कहां थी? अरे आत्मलोक में, सोल वर्ल्ड में। कहां थी? सोल वर्ल्ड में थी, निराकारी धाम में थी। वो निराकारी धाम में क्यों थी और देवताएं हेवन में क्यों थे? कारण क्या है? हाँ, देवताओं के अलावा और कोई ने बाप के प्रैक्टिकल रूप को नहीं पहचाना, जो इस दुनिया में आकर के ज्ञान देता है। क्या स्वर्ग की रचना रचने का ज्ञान देता है या नहीं देता है? स्वर्ग का रचयिता है या स्वर्ग बनाने का प्लान देता है? क्या है, क्या देता है? ये तो बात ठीक है, जो स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है वो ही स्वर्ग बनाता है। क्या बनाता? स्वर्ग बनाता है। लेकिन स्वयं स्थिति में रहने वाला साकार होना चाहिए या निराकार? क्यों है? साकारी दुनिया रचेगा तो जरूर साकार होना चाहिए, उस स्वर्ग के वर्षे को कहा जाता है जीवन मुक्ति। कैसी मुक्ति? जीवन में रहते रहते जीवन मुक्ति। जो खुद जीवन मुक्त होगा वो जीवन मुक्ति का वर्षा देगा, या जो खुद जीवन मुक्त होगा ही नहीं वो जीवन मुक्ति का वर्षा देगा? कौन देगा? है? अरे बोलो।
जो खुद जीवन मुक्त
होगा, खुद जीवन मुक्त होगा तो दूसरों को जीवन मुक्ति का वर्षा देगा। डॉक्टर होगा तो डॉक्टरी का वर्षा देगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर बनाएगा, धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा। ये ठीक है कि स्वस्थिति में स्थित होने वाला ही स्वर्ग का वर्षा देगा, तो स्वस्थिति में एक आत्मा तो ऐसी है जो सदा काल स्वस्थिति में स्थित रहती है। वो कौन है? भूत भविष्य वर्तमान, रामवादी आत्मा, हर बात में रामवादी आत्मा। रामवादी आत्मा कलयुग के अंत में जिसे प्रजापिता कहा जाता है, 500 करोड़ का पिता, विकारी से विकारियों का भी पिता है, जो इस दुनिया में बड़े विकारी हैं, उनका भी कोई बाप है या नहीं है? है? तो विकारियों का भी जो पिता है, वो पिता सारी दुनिया उसको मानती है, क्योंकि दुनिया में सब विकारी है। लेकिन जो विकारी हैं वो साकारी हैं या निराकारी हैं? साकारी हैं। क्या? भोगी हैं। कैसे हैं? भोगी। और उन विकारी मनुष्यों की जो विकारी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने वाला संघ का रंग दे करके निर्विकारी बनाने वाला कोई प्रैक्टिकल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संघ का रंग देह के आधार पर लगेगा, देह की इंद्रियों से लगेगा, या बिना देह और बिना देह की इंद्रियों के लग सकता है? धर्म पिताएं आए, देहधारी थे निराकारी थे? है, देहधारी थे ना, तो उनके संग का रंग देवताओं को लगा, देवताएं भी देहाभिमानी बन गए। माने संग के रंग से नीचे भी गिरते हैं और संग के रंग से ऊपर गिरते हैं। नीचे तब गिरते हैं जब देह में धरी हुई बुद्धि हो उसका संग करें। जिनकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, देहधारी, धर्मगुरु, धर्म पिता क्यों न हो, देह में धरी हुई बुद्धि है उनका संग का रंग करेंगे, उनकी इंद्रियों का संग का रंग करेंगे तो नीचे गिरेंगे। और जिसकी बुद्धि देह में न धरी हुई हो, है, त्रिमूर्ति ने इशारा दिया, उस बाप का परिचय दो। किस बाप का? जिसकी मंदिरों में पूजा होती है वो कहता है, जिस बाप का परिचय देने के लिए कौन कहता है? शिव बाप कहता है। उस बाप का परिचय दो जो बाप इस संसार में पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। क्या? बाप समान बन जाता है, बाप का बड़ा बच्चा बन जाता है। कैसा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। सिर्फ कहने की बात या प्रैक्टिकल शरीर के साथ कर्म करने के आधार पर है, प्रैक्टिकल कर्म करने के आधार पर वो मंदिर में दिखाया गया है, शिव के मंदिर में, कि वो प्रैक्टिकल कर्म भी कर रहा है, जो गीता में आदेश है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना है। क्या? बाबा ने कर्म छोड़ने के लिए कहा या कर्म करने के लिए कहा? करना है, लेकिन कर्म करते हुए बाप को याद करना। मन मन बुद्धि न कर्मेंद्रियों में लगे न कर्मेंद्रियों की रस में लगे, न कर्मेंद्रियों के संग में लगे, कर्मेंद्रियों की याद भी बुद्धि में न रहे। किसकी याद रहे? है, बाप की याद रहे, बिंदु की याद रहे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज रहे, तो ऐसी स्टेज ग्रहण करने में जो अव्वल नंबर है उसकी शिव के मंदिर में पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में। शिव बाप कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग जिसकी यादगार है, जिसकी पूजा होती है, है? हाँ, उस साकारी मनुष्य की यादगार है जो पतितों से पतितों का भी बाप है, और जो पावन देवताएं होते हैं उन पावन देवताओं का भी बाप है। इसलिए मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? कौन बोला? शिव बाप बोला है। हाँ, शिव बाबा बोला, जिसके लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। वो आत्मा सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी होती है। चारों काल में वो आत्मा सत्य है, उस सत्य को कोई झुका नहीं सकता। क्या इतने बड़े बड़े आतताई आए भारतवर्ष में, आक्रमण किए, बहुत से राजाओं को हराया भी, हराया ना, लेकिन वो आत्मा किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है। उसके ऊपर कोई आतताई ने, विदेशी आक्रमणकारी ने जीत नहीं पाई। तो वो आत्मा सदा काल इस सृष्टि पर है, चारों युगों में स्थिर रहती है, इसलिए वो हीरो पार्टधारी है। क्या है? हीरो पार्टधारी को हीरा कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था पत्थर का, उसमें बीच में क्या था? वो हीरा किसकी यादगार? शिव बाबा की, न शिव बाप की, शिव बाप की। वो पत्थर बनता है, शिव बाप पत्थर बुद्धि बनता है, बनता है, वो तो बनता ही नहीं। निराकार की यादगार है हीरा, वो निराकार की यादगार है जो परम नाम में रहता है। परम नाम में सबसे लंबे समय तक सन्यासी बनकर रहता है जो शिवलिंग है, जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग था, उसके बीच में जो हीरा दिखाया है वो किसकी यादगार है? निराकार शिव की यादगार है। साकार में निराकारी स्टेज वाले की यादगार है या शिव की यादगार है? साकार में रहते हुए निराकारी स्टेज बना लेता है। कब तक के लिए? जब तक ये संगम युग रहे तब तक के लिए शूटिंग पीरियड में वो निराकारी स्टेज बना के रहता है, इसलिए उसकी संपूर्ण स्टेज की यादगार है। क्या? शिवलिंग। अब कर्म क्या कर रहे हैं? कर्म ऊपर वाला करता है, वो अकरता है या करता है? हैं? वो तो अकरता है। तो जो मंदिर में कर्म करते हुए दिखाया गया है सर्व इंद्रियों से, जो कहता है तुम सब पार्वतियां हो, पार्वती के साथ वो पति परमेश्वर है, कर्म तो कर रहा है, कर्मेंद्रियां ही दिखाई गई है, लेकिन फर्क क्या है? दुनिया वाले भी वो कर्म करते हैं और वो ही कर्म वो भी करता है जो मंदिर में दिखाया है, फिर उसकी पूजा क्यों हो रही है? दुनिया वालों की क्यों नहीं पूजा होती? भले दुनिया वाले कहते हैं शिव अहम, आत्मा सो परमात्मा, फिर पूजा होती है? है? तो उसकी पूजा क्यों हो रही है? कर्म तो एक ही जैसा है, कुछ अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? है? अरे कुछ अंतर है? अरे अंतर नहीं है। अरे याद का अंतर है, भूल गए। क्या अंतर है? याद का अंतर है। और जो मनुष्य होते हैं वो इंद्रियों की याद में चले जाते, इसलिए पुरुष जब मरता है तो जिन इंद्रियों का जिंदगी भर संग किया है, सुख लिया है, उन्हीं इंद्रियों की याद में मरता है, तो अंतमते सोगते स्त्री जन्म ले लेता है। और स्त्री मरती है तो सारा जीवन जिस इंद्रिय का सुख लिया है, जो सुख याद आता रहता है जीवन में, तो अंत समय में भी अंतमते सोगते हो जाती है, स्त्री पुरुष का जन्म ले लेती है। लेकिन वो एक है जो ऐसी स्टेज में टिक जाता है कि जैसे परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्मा परम पुरुष कौन है? पुरु माने शरीर रूपी पुर, पुरी, श माना शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाला कौन है? शिव बाप तो शरीर रूपी पुरी में सदाकाल आराम नहीं करता, करता है? है वो तो नहीं करता, फिर कौन है? है कौन है? प्रजापिता, वो तो पतित है, पतित का नाम प्रजापिता, 500-700 करोड़ की प्रजा, उनका सबका पिता, उसमें पतित भी है, पतित ही ज्यादा है उसमें। तो प्रजापिता पतित है और पुरुषार्थी भी, पुरुषार्थ करके जब संपन्न बनता है, क्या इंद्रिय को जीत लेता है, जीतने का मतलब औरों की इंद्रियां जो है पुरुषों की वो पतन में जाती है, शक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षरित होती है, और उसकी शक्ति ऐसी गहरी याद में रहता है कि शक्ति क्षीण नहीं होती। तब का गायन है क्या? ऊंचे ते ऊंचा करता, ऊंचे ते ऊंचा रहता वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बताया कि वो ऊंचे ते ऊंचा करता, ऊंचे ते ऊंची दुनिया रचेगा, ऊंचते ऊंचे सुखदाई दुनिया रचेगा या दुखदाई दुनिया रचेगा? है ऊंचे ते ऊंची सुखदाई दुनिया रचता है, वो कौन सी दुनिया है? कर्मेंद्रियों से सुख लेने वाली दुनिया है, ज्ञानेंद्रियों से सुख लेने वाली दुनिया है। ज्ञानेंद्रियों में भी जो श्रेष्ठ आंख है उस आंख का राधा कृष्ण की तरह सुख लेने वाली दुनिया है, या इंद्रियों से भी परे का सुख लेने वाली अति इंद्रिय सुख वाली दुनिया का रचेता है? अति इंद्रिय सुख लेने वाली दुनिया का रचेता है वो कौन से युग में? स्वर्णिम संगम युग। ऐसी ऊंची ते ऊंची दुनिया जहां देवात्माएं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा सुख का अनुभव करती हैं, जहां गिरती कला का नाम निशान होता ही नहीं। राधा कृष्ण सत्युग में जन्म लेंगे, आंखों से सुख भोगेंगे, संतान पैदा करेंगे, उनकी कलाएं कम होती जाएंगी और वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। 16 कला संपूर्ण नहीं, कलाओं से भी अति कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है, सारे कल्प का अंत करने वाला। जो अंत है कोई भी धर्म पिताई नहीं कर सके, वो कार्य करने वाला। तो देखो सत्युग में जो भी देवताएं देवी देवताएं थे उस समय तो सत्य सनातन सब धर्म था देवी देवताओं का, और तो कोई धर्म ही नहीं था। तो सब समझा, वो थोड़े से देवी देवताओं की दुनिया नई दुनिया उस समय, और आत्माएं कहां थी? आत्मलोक में थी। किसके लोक में? निराकारी बाप की दुनिया में थी। किस आकारी बाप की दुनिया में थी? निराकारी बाप की दुनिया में थी। क्यों निराकारी दुनिया में गई? क्योंकि उन्होंने सिर्फ निराकार को पहचाना, उस साकार को नहीं पहचाना। जिसमें निराकार आकर के स्वर्ग की देवताओं की दुनिया रचता है, पहचाना? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स पहचानते हैं? नहीं पहचानते। अभी पहचान रहे हैं? अभी भी नहीं पहचान रहे। बाद में जब लड़ाई झगड़ा मारा मारी खून खराबे की दुनिया हो जाएगी तो भी नहीं पहचाने। उस समय तो टाइम ही नहीं मिलेगा। सब आत्माएं शांति धाम में थी, आत्माएं अपने घर आत्मलोक में थी। बस ये एक ही बात पकड़ लो और समझाओ तो भी बहुत है। क्या हेवनली गॉड फादर जो हेवन रचता है उस दुनिया में थोड़े थे और बाकी सब आत्माएं निराकारी बाप के धाम में थे। निराकारी बाप के धाम में क्या मिलेगा? निराकारी स्टेज मिलेगी, आत्मिक स्टेज मिलेगी, शांति मिलेगी। सुख तो ले नहीं सकता। सुख लेने के लिए शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? सुख लेने के लिए शरीर चाहिए। और वो शरीर की दुनिया जहां सुख मिले शरीर के साथ शरीर की इंद्रियों से, वो सुख की दुनिया साकारी बाप देगा या निराकारी बाप देगा? वो साकारी बाप सो निराकारी स्टेज में जब स्थिर हो जाता है पुरुषार्थ करके, तब उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। वो ही शिवलिंग यादगार है उसे ऊंचे से ऊंचे कर करतार की, जो क्या है, क्या है? निराकारी भी है और साकारी भी है। एक ही बात पकड़ लो तो बात बन जाएगी। सीढ़ी की बात पीछे होती है। क्या पहले पहले किसी को सीढ़ी नहीं समझानी? सीढ़ी की बात भारतवासियों के लिए खास, लेकिन जो विदेशी हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए कौन सा चित्र सामने लाना है? है त्रिमूर्ति और झाड़ का चित्र सामने लाना। बाबा वर्षा देते हैं। क्या बाबा साकार निराकार का मेल है ना, तो कौन सा वर्षा देगा? है देवताएं कौन सी स्थिति में रहती हैं? देवताएं साकार हैं या निराकार? साकार हैं, लेकिन निराकारी बिंदु की स्टेज में रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो साकारी सो निराकारी देवताओं का वर्षा मिल जाता है। देखो बाबा घुमाते कैसे हैं, वो फिर सीढ़ी जो है वो तुमको मदद करती है कि तुम बच्चे कैसे 84 जन्म लेते हैं, और धर्म की आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती हैं। तो उनको समझाओ पहले बापों के बाप का तो परिचय लो। धर्म पिताएं भी ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, गॉड फादर हैं। कहते हैं गुरु नानक भी ऊपर की तरफ इशारा करते, तो उनको बताओ पहले उस बापों के बाप का तो परिचय लो, जिसको पत्थर ठिक्कर में ठोंक दिया है। क्या वो बाप किसने ठोंक दिया? पत्थर ठिक्कर में व्यापक है। ये शूटिंग कहाँ होती है? है? कैसे है? कैसे
सभी भगवान बन के बैठे हैं, सभी भगवान बन के बैठे हैं, अपने भगवान मान के सभी भगवान चला गया।
भगवान बाप की जो बेटी है माया, वो पत्थर बुद्धि है या नहीं है? भगवान बाप का परिचय बुद्धि में बैठता है? और उसका सहयोग देने वाली जो जगदम्बा है, प्रकृति पृथ्वी, वो पत्थर बुद्धि है, बाप को पहचानती है या पहचान करके भी भूल जाती है? तो पत्थर बुद्धि उन्हें कहा जाता है जो पत्थर की तरह अहिल्या बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अहिल्या का शास्त्रों में गायन है, अहि माने सर्प, ल्या माने ले आई। क्या किया उसने? है विकारों में रने रहने वाले सर्पों को ले आई। तो अच्छा किया या बुरा किया? ठिक्कर में, ठिक्कर कहा जाता है, एक ठोकर लगे और मिट्टी का ढेला बिखर जाएगा। तो माया की जिनको एक ठोकर लगती है और एक ही ठोकर में बिखर जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, वो क्या हुए? है ठिक्कर बुद्धि हुए। ऐसों को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, उनकी मत पर चलने लग पड़ते हैं, उनको ही रिगार्ड देंगे, भगवान की मुरली पर ध्यान नहीं देंगे। बाबा बोलते पत्थर ठिक्कर में ठोक करके मुझे रुला दिया है, है? बाप आकर, बाप खुद अपना परिचय देते हैं और फिर भी बाप की बात कोई की बुद्धि में नहीं बैठती, रुलाए दिया है। कैसे? बोला जितना भगवान को रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। पहले तो मेरी तो उनको संभाल दो। क्या जो मुझे बैठ करके पत्थर ठिक्कर में लगा दिया? क्योंकि मूल बात तो यही है ना। क्या क्या मूल बात है? कि भगवान एक व्यापी है, पत्थर बुद्धि और ठिक्कर बुद्धियों में व्यापक नहीं है। ये मूल बात समझाइएगा। जब उनको निश्चय होगा कि बाप है, किनको? मुसलमान क्रिश्चियन शादी को निश्चय होगा कि ये बाप है, बाप से ही सुख शांति की दुनिया का वर्षा मिलता है, और इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से हिस्ट्री देख लो, सुख शांति की दुनिया का वर्षा नहीं मिलता। दुनिया उन धर्म पिताओं के आने के बाद और ही दुखदायी बनती जाती है। जब उनको निश्चय होगा कि ये बाप है तो जरूर वर्षा देता होगा। काहे का? लौकिक बाप, लौकिक दुनिया का अल्पकाल का वर्षा देते हैं और बेहद का बाप बेहद का वर्षा सदा काल का वर्षा देता है। तो जरूर बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देता होगा तो जरूर बच्चा बाप से वर्षा लेगा, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। क्या है? पतितों को पावन बनाने वाला है। कौन सा बाप? निराकारी बाप, निराकार ज्ञान का वर्षा देने वाला पतित पावन है? नहीं। निराकारी ज्ञान का वर्षा देकर पतित प्रजापिता को पावन नहीं बनाता? बनाता है, बनाता है, है? अगर उसे बनाता है तो सबको क्यों नहीं बना सकता? अरे अगर वो बनाता है तो एक कोई क्यों बनाता पहले? सबको नहीं बना सकता पति से पावन? पुरुषार्थ करेंगे तो पति से पावन बनेंगे, ज्ञान को गहराई से उठाएंगे, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तो पति से पावन, नहीं करेंगे तो पावन। तो पुरुषार्थ करने की बात है या निराकार बाप सुख शांति का वर्षा देने वाला है सुख की दुनिया में, जो देह से सुख भोगे जाते हैं वो तो देह का बाप है ही नहीं है? आत्माओं का बाप है या देहधारियों का बाप है? है आत्माओं का बाप है, आत्माओं का बाप। आत्मा का वर्षा शांति देता है और देहधारियों का बाप देह के द्वारा सुख का भी वर्षा देता है, और उस सुख में शांति भी भरी हुई है या नहीं है? देवताओं के जीवन में शांति होती है या नहीं होती है? शांति भी होती है। तो वो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। उसको कौन बुलाते हैं? जो पतित से पावन बनते हैं वो ही बुलाते हैं, या जो पतित से पावन नहीं बनते हैं वो भी बुलाते हैं? है? जो पतित से पावन बनते हैं वो उसको बुलाते हैं, पतित से पावन बनते नहीं वो उसको बुलाते भी नहीं। वो आपस में ही एक दूसरे से सुख लेने में लगे रहते हैं, भले अल्पकाल का सुख मिले। जो पतित से पावन बनते हैं उनके दिल में होता है। शूटिंग पीरियड में वो बुलाते होंगे कि नहीं? अरे ब्राड ड्रामा में बुलाते हैं, भक्ति मार्ग में पतित से पावन बनने वाले बुलाते हैं, दूसरे तो बुलाते नहीं, दूसरे धर्म वाले। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी वो ब्राह्मण बुलाना चाहते होंगे या नहीं बुलाना चाहते होंगे? अंदर अंदर ये बात आती होगी ना कि बाबा आ जाए, नहीं आती? आती है। तो पतित से पावन बनते हैं तो बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते नहीं है उनके दिल में ये भावना आती नहीं कि जल्दी आ जाए। पतित से पावन है सो आए करके बरोबर पावन बनाने की युक्ति बता देंगे। क्या ये युक्ति कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी धर्म पिता, कोई भी धर्म गुरु नहीं बता सकता? क्या क्या युक्ति कि पतित से पावन कैसे बना जाता है? पावन देवताएं पतित कैसे बनते हैं? अरे पावन देवताएं सतयुग त्रेता के द्वैतवादी द्वापर युग से पतित बने या नहीं बने? कैसे है? दूसरे धर्म के धर्म पिताओं के संग के रंग में आए और पतित बने? तो अब उल्टा कर दो, पावन कैसे बनेंगे? अनेकों के संग के रंग से पतित बने। अब क्या करें? एक जो ऊंचे से ऊंचे है उसको पहचाने और पहचान करके पति से पावन बने। तो ये पावन बनने की युक्ति बताते हैं कि जो ऊंचे से ऊंचे है उस ऊंचे से ऊंचे कौन है? ऊंचे से ऊंचे कहेंगे शिव बाप। शिव बाप ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे बनता है। इस सृष्टि पर ऊंचे से ऊंचे कौन है? जो ऊंचे से ऊंचे बनता है और नीचे से नीचे भी बनता है, है? कोई साकार है, मनुष्य है जो ऊंचे से ऊंचे भी बनता है और नीचे से नीच कर्म करने वाला भी बनता है। वो आए करके बरोबर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। क्या? तो पावन बनने की बनाने की युक्ति बड़ी सीधी है एकदम। क्या बड़ी सीधी है? बड़ी सीधी है तो एकदम समझ में आनी चाहिए। पति से पावन बनने की युक्ति बड़ी सीधी है तो एकदम समझ में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? है? आनी चाहिए। किसको समझ में आती है? किसको समझ में आती है और किनको समझ में नहीं आती?
पूरा पहचान दे तो
हाँ, जो बाप को पहचानते हैं उनको समझ में आती है। रामायण में प्रसिद्ध है कि उन्होंने सहयोग दिया है, बंदरों ने सहयोग दिया। अब वो जानवर बंदरों की बात नहीं है, ह्यूमन बंदरों की बात है। कौन से बंदरों की? ह्यूमन बंदरों की बात है। वो ह्यूमन बंदर ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्माएं हैं जो सारी सृष्टि की बीज हैं। क्या है? बीज हैं। अच्छे से अच्छे कर्म करने वाली हैं और बुरे से बुरे कर्म करने वाली भी हैं संग के रंग में आकर। ऊंच के ऊंच बाप के बाप की पहचान धारण करके संग के रंग में आती है तो ऊंचे से ऊंचे देवता बनती है। और द्वैतवादी द्वापर युग से नीच कर्म करने वाले, भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने वाले धर्म पिताओं के संग के रंग में आती है नीचे तो नीचे बन जाती है। एकदम सीधी युक्ति है योग की, लगाव की, अटैचमेंट की। और विरायत वाले भी ये बात जानते हैं कि प्राचीन योग कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का? भारत का प्राचीन योग प्रसिद्ध है। किसका सिखलाया हुआ है वो प्राचीन योग? किसने सिखलाया? अरे किसने सिखलाया? संगमयुगी कृष्ण ने। संगमयुगी कृष्ण को तो दुनिया जानती ही नहीं। संगमयुग में कोई कृष्ण होता है? किसका सिखलाया हुआ है राजयोग? भगवान का सिखलाया हुआ है। किसका सिखलाया हुआ? धनवान का या भगवान का? धनवान का सिखलाया हुआ नहीं है, है? भगवान का सिखलाया हुआ। धनवान धन वाले को कहा जाता है और भगवान भगवाले को कहा जाता है। ये प्योरिटी की पावर जिसके पास सबसे जास्ती इकट्ठी होती है। दुनिया के सारे काम किससे होते हैं? है? प्योरिटी की पावर से। और ये प्योरिटी की पावर जो है वो कुमारों में ज्यादा होती है, अधर कुमारों में ज्यादा होती है, अधर कुमारियों में ज्यादा होती है, या किसमें ज्यादा होती है? कन्याओं में ज्यादा होती है। वो कन्याओं की बुद्धि बचपन से ही, जन्म से ही पवित्र होती है, अपवित्र खास भारतवासी कन्याओं का, उनको संग दोष से बहुत भारत में बचाया जाता है, तो उनकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि होने के कारण सबसे पहले भगवान के कार्य में जैसे पत्नी पति के प्रति सरेंडर होती है, ऐसे भगवान के कार्य में तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से कौन ज्यादा सरेंडर होती है? कन्या ही सरेंडर होती है। वो सरेंडर होती है जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, वो इस संगम युग में मुक्त होती है बंधनों से। कन्याएं मुक्त होती है, बंधन मुक्त होती है, या माताएं बंधन मुक्त होती है? कन्याएं बंधन मुक्त होती है, कुमार भी बंधन मुक्त नहीं। क्यों कुमार क्यों नहीं बंधन मुक्त? क्योंकि कहा जाता है, भगवान भी एक तरफ बोलते हैं कि पुरुष सब एक, तो दुर्योधन दुशासन है। दूसरी बात, कुमारों में ये खास बात बताई जाती है कि गृहस्थियों की 9999 चिंताएं और कुमार की एक चिंता, कुमारी चाहिए, दोनों को पलड़े में रखो तो उस कुमार की एक चिंता भारी हो जाएगी, बेचारे मजबूर हो जाते हैं उस एक चिंता से। इसलिए कुमार भले, उनके लिए बाबा ने बोला है बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, फिर भी कुमार चाहे तो अपन को सरेंडर समझ करके चल सकते हैं, नहीं है चल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा वरदान भी दिया कुमारों को, क्या? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। माना विश्व की बादशाही लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, सारे विश्व को बिगाड़ना चाहे, नष्ट करना चाहे, वो भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बीज रूप आत्माएं हैं उनकी दुनिया को भस्म करना चाहे, बिगाड़ना चाहे, तो भी वो भी कर सकते हैं। इसलिए प्रदर्शनी अंग का चित्र देखा होगा, शिवरात्रि वाला चित्र, जिसमें माला में शक्तियां दिखाई गई हैं, बाबा उन शक्तियों के बीच में खड़े हैं और इशारा कर रहे हैं सामने की तरफ, दूसरे पोर्शन में कुमार खड़े हुए हैं, उनमें अधर कुमार भी होंगे, ऐसे करके इशारा कर रहे हैं। क्या मतलब? हमारे ज्ञान बाणों से मारने की बात है, क्या ज्ञान बाणों से मारने की बात है? तो वो दुनिया को भस्म भी कर सकते हैं कुमार, और ये होने वाला है। बाहर की गवर्नमेंट भी, नेताएं जानते हैं कि कौन सी शक्ति है जो बड़ी प्रबल है, है युवा शक्ति बहुत प्रबल है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो युवा शक्ति बहुत प्रबल है, ऐसा प्रबल रूप धारण करेगी कि सारी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया जो बीज रूप है वो सबको ले मारेगी। फिर नई दुनिया कहां से आएगी? यज्ञ के आज में भी विनाश हुआ था, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बाहर की दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हीरों की क्षमा भस्म हो गई, हीरो क्षमा नागसा की, क्या क्या नाम दिया, हीरो क्षमा, वो हीरों की क्षमा रोशनी खत्म हो गई नागासा की, क्या अगर शंकर है हीरो इस दुनिया का तो उसके गले में कौन पड़ा है, नाग पड़ा हुआ है, उस नाग के जो फॉलोअर्स हैं वो सब है नागासा की दुनिया के, सब खलास हो गए। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, एक बार रची पसंद नहीं आई नष्ट कर दी, दूसरी बार रची पसंद नहीं आई नष्ट कर दी, 47 में रची ना, जो रची वो 76 में विघटन होना शुरू हुआ कि नहीं है, विघटन होना शुरू हुआ, बोर्ड लग गया क्या, टू लेट, तो विघटन हो रहा है या नहीं हो रहा है, है? ब्राह्मणों की दुनिया में कहां विघटन हो रहा है, अरे विघटन कहां हो रहा है, जो मुरली को नहीं मानते उनका विघटन होना है, जो मुरली को मानते हैं उनका संगठन बनता है, जो मुरली को पूरा मानता है क्या, जो मुरली को पूरा मानता है उसका विनाश होगा है, उसका विनाश नहीं हो सकता। तो एक बीज रूप बाप जो सारी सृष्टि का बीज है उसका विनाश नहीं हो सकता, बाकी सबका सबका विनाश हो जाता है, विनाश होना माने देश ही विनाश हो जाता है, है अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, क्योंकि सारे ही मनुष्य मात्र सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ अनुगमन करके जिंदगी जीते हैं या बिना समाज के अकेले भी जी सकते हैं, है? समाज से बने हुए। तो देखो पूरा पूरा 100% क्या डिटेच, जैसे वृक्ष का बीज फल में, फल पकने पर वो बीज सारे वृक्ष से, तने से, टहनियों से, फलों से, फूलों से डिटेच हो जाता है, जो वृक्ष का या फसल का पहला बीज खेती में बोने के लिए चुना जाता है, ये भी मनुष्य शक्ति रूपी खेती है भगवान की, मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ में वो बीज पकता है तो सारे झाड़ से 500-700 करोड़ पत्तों से अपने को डिटैच कर लेता है, कैसा डिटैच, कैसा डिटैच, आंखों से आंखों में डाल करके भले देखता है क्या, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता, कानों से सारी दुनिया की ज्ञानी सुनता है लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनता, ऐसे सभी इंद्रियों से कर्म करता है लेकिन करते हुए भी नहीं करता। तो बताया उस बाप का परिचय देना है, बड़ी सीधी सी बात है योग की, कि किससे योग लगाना है, एक ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचानना है और उससे योग लगाना है। योग का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से ही योग लगाना है, उससे ही पावन बनेंगे, नहीं। कौन से अंग के लिए गायन है? षष्ठी सुधरती भी है और उसी अंग से षष्ठी बिगड़ती भी है। हाँ, ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ है आंख। आंख से ही ये गायन है, दृष्टि से षष्ठी सुधरती है। लेकिन क्या पतितों की दृष्टि से षष्ठी सुधरती है? है नहीं। जो पावन है उस पावन की दृष्टि से षष्ठी सुधरती है। तो अभी कोई पावन है इस दुनिया में? अभी कोई पावन है? है सिवाय एक के? जो एक है वो पुरुषार्थी नहीं है? तो पुरुषार्थी है तो पावन कहां से हो गया? अरे है, भविष्य में जब बनेगा तब मान लेंगे। अभी संपूर्ण तो नहीं है। संपूर्ण है तो संघ के रंग से क्या बनाएगा? संपन्न बनाएगा। जो देखे, क्या कहा, जो इन स्थूल आंखों से भी देखे तो क्या कहे? जो पाना था सो पा लिया। जो इन स्थूल कानों से भी एक दो शब्द भी सुने बाप से तो क्या बुद्धि में आ जाए कि जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रहा। भगवान बाप मिल गया, सदा काल के लिए मिल गया या आज मिल गया? कल अनिश्चय बुद्धि, सदा काल के लिए मिल जाए, अमरनाथ का बच्चा बन जाए। अभी ब्राह्मण तो हैं लेकिन मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? आज बच्चे बनते हैं, बाप को पहचानते हैं, कल ग्लानी करने लग पड़ते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते। निश्चय बुद्धि माने जन्म लेना और अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। तो जन्म मरण की शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? है? अभी भी जन्म मरण की शूटिंग हो रही है। मृत्यु लोक में है, कोई भी अमर लोक में नहीं है, क्योंकि अमरनाथ बाप जो अधरात्रि में आता है घोर अंधकार की महाशिवरात्रि गाई हुई, वो अभी है घोर अंधकार की जब रात्रि होती है, चारों तरफ से कमरा बंद हो, कोई भी रोशनदान खिड़की दरवाजा खुला ना हो, और रात्रि के 12 बजे है और अमावस्या की रात हो, तो घोर अंधकार की रात और बरसात हो रही हो जोर से, काले काले बादलों से दुनिया ढकी हुई हो, तो उस समय कुछ दिखाई पड़ता है?
नहीं,
है? नहीं दिखाई पड़ता। बाप या भाई या बहन कुछ दिखाई पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो टाइम आता है, क्या टाइम? क्या बीज रूप आत्माओं की दुनिया से ये बात शुरू होती है? क्या पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधकार छा जाता है, सब अनिश्चय बुद्धि की मौत सो जाते हैं, अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं सब। क्या तब सूर्योदय होता है? क्या जो ज्ञान चंद्रमा है वो भी अमावस्या पर क्या होता है? वो भी अस्त हो जाता है। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जहाँ सभी प्राणी बीज रूप आत्माएं खास अज्ञान अंधकार की अंधकार में अज्ञान में डूब जाते हैं, बाप दिखाई ही नहीं देता। जो आज अव्यक्तवाणी में बोला, क्या क्या बोला, इशारा दिया कुछ? अरे अव्यक्तवाणी में दिखा, इशारा दिया। बाप प्रत्यक्ष रहेंगे या गुप्त हो जाएंगे? गुप्त हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तब उस अंधकार की रात्रि में ज्ञान सूर्य उदय होगा, एक ही उदय होगा। फिर बाद में नंबरवार 8 और प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। 76 में दो आत्माओं के लिए बोला, अब कितनों के लिए? 8 आत्माओं के लिए। तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच वो 8 की राजधानी स्थापन होगी। वो 8 रुद्रमाला के होंगे या विजयमाला के होंगे, कौन पहचानेंगे? कौन पहचानेंगे? पहले रुद्रमाला के बच्चे पहचानते हैं, रुद्र के बच्चे पहचानते हैं, जो रुद्राक्ष कहे जाते हैं। अक्ष माने आंख, उनकी आंख कैसी है? रुद्र के बच्चे हैं ना, तो आंख भी कैसी है? रुद्र की आंख है, वो रुद्र की आंखें हैं। जो ज्ञान यज्ञ रचता है, शिव यज्ञ कहा जाता, ब्रह्मा यज्ञ क्या कहा जाता, विष्णु यज्ञ कहा जाता, शंकर यज्ञ कहा जाता, क्या कहा जाता है? रुद्राक्ष। जिस रुद्र ज्ञान में यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है, क्या इस ज्ञान यज्ञ में पहले पहले ब्राह्मणों की बीज रूप आत्माओं की दुनिया पहले स्वाहा होती है। एक बचता है, जो गांव में माताएं गीत गाती रहती हैं, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की मारी नहीं, दाढ़ी लाई गई रे, हड़कंप पैदा कर दिया उसको भी। तो ये सीधी सी एक बात है, उस एक को पहचानो जिसके संग के रंग से 8 निकलते हैं, जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते हैं, और वो नई राजधानी छोटी सी तैयार होती है। जिस राजधानी में उन 8 के बीच राजा महाराजा भी है, क्या उनके सहयोगी राज्य अधिकारी भी हैं? अरे राजा अकेला विश्व की बात सही संभालेगा? नहीं, राज्य अधिकारी भी हैं छोटे बड़े, और राजा महाराजा के परिवार में, राज्य अधिकारियों के परिवार में भी दास दासी का कर्म करने वाले भी हैं, माना दास दासी भी है, और फिर उनमें चांडाल भी हैं, क्या ऐसा नीच पद पाने वाले भी, जो राम की राजगद्दी का चित्र देखा होगा, देखा कोई ने कि नहीं है? देखा, उस राजगद्दी में दिखाते हैं, लोगों ने समझ लिया त्रेता युग की बात है, वो त्रेता की बात नहीं है, संगम युग की बात है। जिस संगम युग में 4 धर्मों के चारों ही बीज उस राजधानी में दिखाए हैं। राम जो राजा के रूप में दिखाया, और लक्ष्मण जो छाता लिए खड़ा है, छत्रधारी, और भरत और शत्रुघ्न। भरत चमर डुलाए रहा है, पंखा कर रहा है, और शत्रुघ्न पांव धो रहा है, माने दास दासी के कर्म करने वाले भी दिखाए हैं। तीनों धर्मों जो मुख्य धर्म है, उन तीनों धर्मों के मुखिया बीज रूपात्मा है, और वो आत्मा भी दिखाई है जो विश्व पिता के मस्तक में रहती है। कौन है? जो बच्चा बहुत सर्विसेबल होता है उस बच्चे को बहुत प्यारा समझते हैं, जिस पर बहुत आस होती है उस बच्चे को बाप सर पे चढ़ा लेते हैं। तो कौन सा बच्चा है? ब्रह्मा की आत्मा जो हनुमान के रूप में दिखाई जाती है। राम भगवान का सबसे जास्ती साथ किसने दिया? सीता ने दिया, लक्ष्मण ने दिया, भरत ने दिया, शत्रुघ्न ने दिया, माताओं ने दिया, किसने दिया? प्रजा ने दिया है, हनुमान ने दिया। हनुमान कौन था? हाथी था, घोड़ा था, क्या था है? बैल था। क्या था? मनरूपी घोड़ा दिखाते हैं, बड़ा बंदर था। क्या था? बंदरों का मुखिया था, वो दिखाया गया। जो गले में दिखाया जाता है कौन? कौन? वासुकी। वासुकी नाग दिखाते हैं ना, नागों का राजा। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या बताई? पावन बनने की युक्ति है, है? याद है? अरे रसगुल्ला किसको याद आएगा है? किसको याद आएगा? चलो खाया ना हो, दूसरों को खाते हुए देख लिया हो, बड़े जीव के चटकारे लेके खा रहा है, तो उसे याद आएगा हम भी खाए ऐसा, इसको मजा आ रहा है, है? तो याद आएगा ना। जो चीज आंखों से देखी जाती है याद आती है, कोई भी इंद्रियों से जो चीज सुख का अनुभव कराती है वो याद याद जरूर आती है। ऐसे नहीं याद करो याद करो याद करो तो याद आ जाएगा, कब याद आएगा है? है? प्रैक्टिकल में इंद्रियों से अनुभव लेंगे तब याद आएगा, कि बिना अनुभव के याद आ जाएगा? संग करेंगे तब याद आएगा, कि बिना संग लिए अनुभव याद आ जाएगा? संग करेंगे तो याद आएगा। ओम शांति।